بالله وكفى وسلام
ماشي.
على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. हाँ भाई, पिछली क्लास में क्या बात हो रही थी? जी हम हाँ
अपना वो कुरेश के आदमी के आधा मदीने में के रास्ते पे आधा आधा कर दिया
आधा कर लिए थे, क्या
आधा से कर दिया
कर लिया था?
कुरेश के आदमी आधा आधा
आ रहे थे? अच्छा, अटैक करने आ रहे थे जी।
तो आ वो हद गए
वो हद तक पहुंच गए थे। और
शाह
हाँ, शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का नाम था
अब्दुल रहीम
शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह। किसी ने यहाँ पे सवाल पूछा होता, शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह उनके वालिद का नाम था, शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के। वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उनका भी एक मदरसा था दिल्ली के अंदर, जबरदस्त किस्म का जी। और अच्छा, एक एक यहूदी जिस जो कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता था, शेर लिखता था गंदे गंदे किस्म के, तो उसको कत्ल करने के लिए सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। तो उन्होंने जो पूरी प्लानिंग करी थी और किस तरह से उसको जाके कत्ल किया था, वो भी हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। तो जो मेन टॉपिक पिछली क्लास के अंदर बड़ा टॉपिक जो शुरू हुआ था वो था गजवाए उहद का। ठीक है, हमने आपको बताया था कि वो जो काफिला था ना, जो अबू सुफियान लेकर के आ रहे थे शाम से, और इस काफिले के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने अटैक करना था सहाबा को लेकर के। ठीक है, तो जंगे बदर तो उसी से शुरू हुई थी ना। चश्मा चश्मा चाहिए, ये दे दीजिए पीछे। तो सारा गजवाए बदर का मामला उस काफले की हिफाजत के लिए शुरू हुआ था ना। तो वो काफला जो है वो तो हिफाजत के साथ मक्का मुकरमा पहुंच गया, और वहां जो है वो लड़ाई शुरू हो गई मुसलमानों की और मुशरिकीन मक्का की। और उस लड़ाई के अंदर फिर बहुत सारे कुरैश के जो सरदार थे वो मारे गए। ठीक है, तो अब मक्का मुकरमा के अंदर कहते हैं सफे मातम बिछ गई। क्या मतलब कि सारे के सारे जो है ना वो रोना धोना शुरू हो गया। 1 महीने तक तो वो रोते ही रहे ना, जोर जोर आवाज से। फिर 1 महीने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं रोएगा, बस बहुत हो गया, अब कोई नहीं रोएगा। ठीक है, तो फिर रोने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन ये लोग बहुत गुस्से में थे कि हमने बदला लेना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि वो जो काफला आया था उस काफले का जो असल सामान था ना, जो जो आपका कैपिटल होता है, जो जो चीज आप बेचने के लिए लेके जाते हैं फिर खरीदते हैं, तो असल सामान एक होता है, वो तो उन्होंने बांट दिया सारे लोगों में। लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिला था ना, जो कि 50,000 दिरहम था। ठीक है, तो इन्होंने फैसला किया कि हम इस 50,000 दिरहम से जो है ना हम लड़ाई करेंगे, जा करके मुसलमानों के ऊपर अटैक करेंगे और बदला लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इनमें सबसे ज्यादा बड़े बड़े लोग कौन थे जो कि बदला लेना चाहते थे? ये वही लोग थे कि जिनके किसी करीबी रिश्तेदार का जो है ना वो कत्ल हुआ था जंगे बदर के अंदर। सही है, कोई बड़ा रिश्तेदार इनका, करीबी रिश्तेदार, जैसे अबू सुफियान। तो उनका, क्योंकि बाद में मुसलमान हो गए थे, इस वजह से हम उनके लिए उनका नाम इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अदब के साथ। तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला जो थे ना, उनका बेटा हंजला, ये जो है वो बदर के अंदर कत्ल हुआ था। फिर अबू जहल कत्ल हुआ था। ठीक है ना, अबू जहल के बेटे जो थे ना वो बाद में मुसलमान हो गए थे, हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत बड़े जंगजू किस्म के इंसान थे, बहुत बड़े फाइटर थे, जैसे खालिद बिन वलीद रतान थे ना, बहुत बड़े फाइटर। ठीक है, सैफुल्ला, तो ये खालिद बिन वलीद रतान जैसे ही थे, बस तकरीबन बड़े जबरदस्त कमांडर किस्म के इंसान थे अकरमा। ठीक है, तो अकरमा के बाप का कत्ल हो गया था। ठीक है, उसी तरीके से अबू जहल का जो 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 भाई था, ठीक है, तो वो भी बड़ा गुस्से में था कि भाई मेरा भाई जो है वो कत्ल हो गया, सफवान बिन उमैया, तो उमैया कत्ल हो गया था, तो उसका बेटा सफवान जो था वो बाद में ये भी मुसलमान हो गए थे, तो ये भी बहुत गुस्से में थे कि भाई बदला लेंगे। वो भी मुसलमान हो गए थे, मरे थे। अबू जहल के का एक और बेटा, बेटा को तो नहीं था। उतबा और शैबा है ना, तो इनका बेटा हाँ अब्दुल्ला, कौन हिंदा के भाई और बाप तो कत्ल हुए थे ना।
वो
हाँ तो वो को वलीद, वलीद जो था वो हिंदा का बाप था है ना, बाद में आएगा वैसे पूरा प्रकरण, भाई था हिंदा का। खैर तो खैर ये जो करीबी रिश्तेदार थे, अब ये लोग बहुत गुस्से में थे कि हमने इनका बदला लेना है, तो इन लोगों ने फिर मदीना मुनव्वरा से जो यहूदी आया था उसके साथ मिलकर के वादा भी किया था कि हम सब नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जो आपने अभी बताया अभी।
मुसलमान हो गए।
नहीं, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बाद में जाके मुसलमान हुए थे, ठीक है। तो बहरहाल इन लोगों ने फिर वहां से कूच किया, सारे लश्कर को तैयार किया, और 3,000 बंदे थे इसके अंदर, ऊंट कितने थे, 3,000 ही ऊंट थे, ठीक है, और 200 जो थे ना इनके पास घोड़े थे। और एक और भी खास बात थी इस लश्कर के अंदर, हाँ इनके साथ 15 औरतें भी थी, और ये औरतें जो थी ना ये ऐसी नहीं थी जो मासिया किस्म की औरतें होती हैं सड़क पे काम करने वाली, नहीं, अशराफ की औरतें थी, यानी जो शरीफ और बड़े जो लोग होते थे ना उनके सरदार, उनकी घर की औरतें थी, बीवियां थी उनकी, ये जैसे अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनकी बीवी भी साथ थी, अबू सुफियान की जो है वो बीवी थी, और इस तरह की बड़ी बड़ी औरतें, हिंदा जो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी, तो वो भी इन 15 औरतों में शामिल थी। और इन औरतों को लेके क्यों गए थे, ताकि औरतें जो है ना वो मर्दों को पीछे से पुश करती रहे, है ना, गैरत दिलाती रहे, वो पीछे पलटे तो हम तुम्हें जो है वो जूतियां मारेंगे, ठीक है, इस तरीके से पीछे मत पलटना, वापस नहीं आना, तो वो शेर भी पढ़ती थी, बातें भी याद दिलाती थी। और दूसरा काम ये था इन औरतों का एक और मकसद क्या था, कि इनको डर भी था कि अगर हम भाग गए ना डर करके, हम यानी शिकस्त हो गई हमें, तो हमारा दुश्मन जो है ना, नाउजुबिल्लाह, तो मुसलमान इनके दुश्मन थे, तो हमारा दुश्मन जो है ना वो हमारी औरतों को नहीं छोड़ेगा, हमारी औरतों की इज्जत खराब कर देंगे। हालांकि मुसलमानों ने तो किसी औरत की इज्जत खराब नहीं करनी होती, लेकिन उस जमाने में ऐसे ही होता था, आज भी ऐसे ही होता है कि वॉर में जो हार जाते हैं तो फिर दूसरी पार्टी जो होती है वो औरतों को भी मारती है बुरी तरीके से। जी, औरतें पानी भी पिलाती हैं, जख्मियों की मरहम पट्टी भी करती हैं, ठीक है, लेकिन ये इन औरतों को इसलिए नहीं लेकर गए थे, ठीक है ना, वो तो मुसलमानों की औरतें जो हैं वो इस काम के लिए आती थी, जैसे फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आया है कि वो उहद के अंदर मरहम पट्टी कर रही थी, और दूसरी भी सहाबियात थी, तो इनकी इन औरतों का ये मकसद था। अच्छा बहरहाल, तो फिर ये लोग वहां से निकले और उहद के करीब तक पहुंच गए। अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के चचा, वो उस वक्त तक मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने जो है ना वो एक बंदे को तेज रफ्तार घोड़े के साथ रवाना किया कि जल्दी से जो है ना मेरा खत आप ससुरम को पहुंचा दो, ताकि आप ससुरम को पता चल जाए, ठीक है। दासूर गतफानी ट्राइड टू अटैक द दासूर गतफानी, अच्छा तो हाँ नहीं, गतफानी ये तो 2-3 हफ्ते पहले हमने बात करी थी, वो जो गतफान कबीले का सरदार था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश करी थी, वो तो बहुत पुरानी बात होगी। अच्छा अब क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत मिल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता चल गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दो सहाबी थे, हजरत अनस और हजरत मुनिस रजी अल्लाह तआला, अनस और मुनिस, ठीक है, दो भाई होंगे गालिबन, नाम से तो ऐसे ही लगता है, तो इन दोनों को ना रिकॉग्निशन, क्या कहते हैं, मुश्किल वर्ड मेरी जुबान पे नहीं, रिकॉनेसेंस के लिए, यानी इनको जो है ना वो जासूसी के लिए भेजा कि पता करके आओ कि कितने लोग हैं, कहाँ पर पहुंच गए, तो उन्होंने आकर के इतला दी कि भाई ये लोग जो है ना वो बहुत करीब पहुंच गए। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने एक और सहाबी हब्बाब बिन मुंजर को भेजा दोबारा इसी काम के लिए कि उनकी तादाद मालूम करके आओ, ठीक है, देखें कैसी जो है वो जासूसी का काम, सर्वेलेंस का काम, रिकॉनेसेंस का काम नबी अलैहिस्सलाम करवाते थे अपने सहाबा से, ठीक है, और सहाबा जो है वो तैयार होते थे कि भाई हाँ आप तो फरमाएंगे वो करेंगे। तो हब्बाब बिन मुंजर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो गए और उन्होंने जो है ना वो आकर के ठीक ठीक अंदाजा लेके बता दिया कि हाँ तकरीबन 3,000 बंदे आए हैं, ठीक है। जब ये खबरें सारी मिल गई तो ये वक्त जो था ना, ये था जुमेरात की रात, यानी जिसको कि असल में शबे जुमा कहते हैं, राइट। नेक्स्ट डे जब जुमा होता है ना, तो हमारे दीन के अंदर दिन कब स्टार्ट होता है? दिन की स्टार्टिंग मगरिब के वक्त हो जाती है, ठीक है, फजर के वक्त नहीं, मगरिब के वक्त जुमे का दिन शुरू हो जाता है। जब भी जुमा रात, थर्सडे को क्या कहते हैं? जुमा रात, जुमे की रात, ठीक है। तो असल में जुमे की रात है, जुमे का दिन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो शब जुमा, ये टाइम था जबकि आप सल्लम को पता चला। तो अब जो रात आने वाली थी ना, इस रात में सहाबा कराम ने पहरा देना शुरू कर दिया। हजरत साद बिन मुआज का नाम आता है, उसैद बिन हुजैर रज़ियल्लाहु का, साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु, इन्होंने मस्जिद का पहरा देना शुरू किया, घरों का पहरा देना शुरू किया, कहीं ऐसा ना हो कि कुफार के लश्कर में से कोई आकर के रातों रात जो है ना वो छापा मार अटैक कर दे यहाँ पे, राइट, कमांडो अटैक कर दे और किसी को नुकसान पहुंचा दे, नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचा दे। तो पहरा देना शुरू कर दिया जी।
वो पहला
अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहरे का मतलब होता है कि हिफाजत करने के लिए, जो आप किसी के चारों तरफ घूमते हैं ना, ठीक है, तो उसको कहते हैं पहरा देना। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा है सड़कों के ऊपर पुलिस की गाड़ियां जो घूमती रहती हैं, क्यों घूमती हैं? कि भाई कोई चोर, कोई डाकू, कोई बुरा आदमी जो है ना, वो कोई गलत काम ना करे शहर के अंदर। तो पुलिस की गाड़ियां जो ये घूमती रहती हैं ना, इसको कहते हैं कि वो शहर के अंदर पहरा दे रही हैं, ठीक है, पहरा दे रही हैं, गार्ड कर रही हैं शहर को बुरे लोगों से, इवल क्रिमिनल से, डाकुओं से, चोरों से, उसको पहरा देना कहते हैं। अच्छा, तो इस तरह से रात गुजरी, और फिर उसके बाद जब फजर का वक्त हुआ ना, तो फजर के वक्त फिर नबी अलैहि सलाम ने नमाज के बाद सहाबा को बुलाया, ठीक है, और उनसे मशवरा किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, काफिरों की फौज जो है वो आ चुकी है, वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर है, उनके पास सारे हथियार हैं। 700 जो लोग थे ना काफिरों की फौज में, वो 700 तो थे जो कि पूरा टॉप टू बॉटम लोहे में डूबे हुए, राइट, जिरह पहने हुए ना, ठीक है, इतने ज्यादा वो तैयारी करके आए थे। और बाकी लोग जो थे उनके पास तलवारें थी, नेजे होंगे, तीर कमान होंगे, और दूसरी चीजें, ठीक है। तो सहाबा कराम को बुलाकर मशवरा किया कि भाई हमें इनका मुकाबला कैसे करना चाहिए। बदर में ये सब कुछ नहीं था, बदर में क्या हुआ था, काफला गुजर रहा था और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई चलो जाकर के हमने काफले को लूटना है, ठीक है। तो वहां पर तो कोई वॉर थी नहीं, तो इस वजह से मशवरा करने की भी जरूरत नहीं, बस लोगों को पकड़ो, अच्छा भी तुम्हारे पास तलवार है चलो लेके चलो, तुम्हारे पास तलवार नहीं है कोई बात नहीं बगैर तलवार के चलो, ठीक है ना, कोई प्लानिंग नहीं, कोई मशवरा नहीं, कुछ नहीं। यहां पर ऐसा नहीं था, ओहद का मामला ऐसा नहीं था। अच्छा, ओहद में और बदर में कितना डिस्टेंस है, कितने दिनों का? 1 साल और कुछ दिन, ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि बदर का मार्का हुआ था 17 रमजान को, और ओहद का जो मार्का हुआ था ना, ये मार्का कहते हैं वॉर बैटल, ये हुआ था तकरीबन 11 शव्वाल को, ठीक है। तो 17 रमजान के बाद जो है वो 12 दिन रमजान के रह गए, और शव्वाल के जो है वो 11 दिन हो गए, तो 12 प्लस 11 जो है वो 23 डेज हो गए, ठीक है। लेकिन ये 23 डेज जो है ये किस हिसाब से? कमरी हिसाब से, ठीक है। और कमरी जो साल होता है वो शमसी साल के मुकाबले में कितना होता है, यानी जो सोलर कैलेंडर होता है उसमें एक ईयर कितने डेज का होता है? 365 डेज का एक साल होता है, ठीक है। अच्छा, जो कमरी साल होता है वो इससे हमेशा 10 दिन कम होता है अंदाजा, ठीक है ना, 9-10 दिन कम होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो अगर कमरी साल में आपने 10 दिन और ऐड कर दिए, तो गोया के ऑलमोस्ट अराउंड 360 to 370 डेज के बाद जो है वो ओहद का मार्का होता, अराउंड 370 डेज के बाद ओहद का मार्का, ठीक है। अच्छा, जब नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के साथ मशवरा किया, सहाबा इकराम के साथ ना, तो जो सीनियर सहाबा थे ना, जो बुजुर्ग होते हैं, जरा उनकी उम्र बढ़ चुकी होती है, बड़े माशाल्लाह होशमंद हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, जोश व खरोश जो होता है ना उनमें थोड़ा सा सेटल हो जाता है, होश ज्यादा आ जाता है, जोश जो है वो कम आ जाता है, और नौजवानों में जोश ही जोश है, गाड़ी भी चला रहे हैं तो यूं करके जो है वो सबको पीछे छोड़ना है मुझे, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं तो सबको जाना पीछे छोड़ देना है, ठीक है। तो नौजवानों का जोश और बूढ़ों का होश, तो जो होश वाले थे ना सहाबा बड़े बड़े, तो उन्होंने मशवरा दिया कि हमें जो है ना इन लोगों का मुकाबला बाहर निकल के नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मदीना मुनव्वरा के अंदर ही रह करके मुकाबला करना चाहिए। लेट देम अटैक, ठीक है ना, उनको अटैक करने दीजिए, हम यहां पे बैठ करके डिफेंड करेंगे मदीना मुनव्वरा को, ठीक है। लेकिन कुछ और सहाबा थे जिनमें के ज्यादातर जो थे ना वो नौजवान थे, ठीक है, और कुछ जो थे वो एक्चुअली जरा बड़ी उम्र के भी थे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो जो है ना बाहर निकल के फाइट करनी है, ठीक है। अगर हम यहां बैठ करके उनके आने का इंतजार करेंगे ना तो वो लोग कहेंगे कि क्या बुजदिल किस्म के लोग हैं, डरपोक है ना, इनमें तो लड़ने की हिम्मत नहीं है, बाहर निकल के नहीं लड़ रहे हैं, ये तो उधर ही अपने घरों के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, इस तरह की बातें, ठीक है। तो हम जो है ना यहाँ पे नहीं बैठेंगे, हमने निकल के फाइट करना है। अच्छा, इन सहाबा की एक इससे भी ज्यादा बड़ी रीजन थी, सिर्फ ये नहीं था कि जी वो हमें बुजदिल समझेंगे, इससे भी बड़ी एक रीजन थी, वो क्या, ये बदर में शामिल नहीं हो सके थे और हाँ, दोनों रीजंस थी इनकी, इनमें से कुछ ऐसे थे जो कि बदर में शामिल नहीं हो सके थे, ठीक है ना। तो वो चाहते थे कि जी अब हमें मौका मिला है निकल करके फाइट करने का, ठीक है, तो हम फाइट करेंगे। कुछ ऐसे थे जो कि बदर में शामिल थे भी, ठीक है, लेकिन उनको एक बात पता थी, एक बात उनको पता थी, क्या जी, माशाल्लाह, तो आप भी बता रहे थे मम्मी, बदर से उनको एक बात याद थी कि बदर में याद है कि वो फिदिया वाली बात हुई थी कि भाई जो कैदी है ना, तो इन कैदियों को हम पैसे लेकर के छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहते थे कि नहीं, इनको सबको कत्ल करो, ठीक है ना। उमर रज़ा ने भी यही फरमाया था कि सबको हमें कत्ल कर देना चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त क्या डील हुई थी, अल्लाह के साथ एक डील हुई थी, वो डील ये हुई थी कि भाई या तो उनको कत्ल करो, ठीक है, या अगर कत्ल नहीं करते ना बल्कि इनको फिदिया लेके छोड़ते हो तो फिर खुद कत्ल होने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो नबी अलैहि सलाम ने ये डील जो है वो सहाबा के सामने रख दी थी, है ना, विच वन यू वॉन्ट टू चूज, कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए। तो सहाबा तो थे जन्नत के आशिक, राइट, वो तो जन्नत के लिए जिंदगी गुजारते थे ना, ठीक है, हम तो दुनिया के लिए जिंदगी गुजारते हैं, वो जन्नत के लिए जिंदगी गुजारते थे। तो उन्होंने कहा भाई शहादत मिल रही है, अच्छा शहादत की का वादा हुआ था, ये नहीं था कि बगैर ऐसे मारे जाओगे, नहीं, डील ये थी कि या तो शहीद हो गए या जो है वो शहीद नहीं हो गए। इन्होंने क्या पसंद किया, शहादत पसंद की, ठीक है ना। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, अगरचे के इस मौके पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तो मारने के हक में थे, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की एक दुआ याद आ गई, वो दुआ मांगा करते थे अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मर ज़क़नी शहादतन फी सबीलक वज़अल क़बरी फी बलद हबीबक, ऐ अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत अता फरमाइए, ये दुआ मांगा करते थे वो, ठीक है। तो ऐसे सहाबा कराम जो है वो दुआ मांगते थे शहादत की। तो जब उनके सामने ऑप्शन आया तो ऑब्वियसली दे चोज द शहादत ऑप्शन। तो उनको ये बात याद थी, उन्होंने कहा भाई अब तो हमें मिला है मौका शहीद होने का, ठीक है, तो हमने तो बाहर निकल के ना अपना आपको यूं करके सीना खोल करके है ना शहादत के लिए अपना आपको पेश करना है, लड़ना भी है, मारना भी है, और फिर उसके बाद मर भी जाना है, ठीक है। तो दोनों रीजन थी, एक रीजन ये थी कि बदर में बहुत सारों को मौका नहीं मिला था जाने का, और दूसरी रीजन ये थी कि वो शहादत इसमें ना अपनी शहादत देख रहे थे, ठीक है। तो अपना इन लोगों ने बड़ी बड़ी इस तरह की बातें करी। तो अच्छा, इन इनमें कुछ बुजुर्ग भी थे ना के जो के लड़ना चाहते थे बाहर निकल के, वो बुजुर्ग भी जरा यानी नौजवानों जैसे बुजुर्ग थे, ठीक है, उनमें होश से ज्यादा जोश, माशाल्लाह। उनमें सबसे ज्यादा कौन थे, किसी को याद है, बताए किसी को, पहले हमने डिस्कस तो नहीं किया। इनमें सबसे ज्यादा जो जोश वाले थे ना बुजुर्ग, जो के बदर में भी शामिल थे, वो थे सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह तआला, कौन, हमजा रज़ी अल्लाह तआला, ठीक है, जो कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम के चचा भी थे, नबी अलैहिस्सलाम सलाम के एक रिश्ते में भाई भी लगते थे, रजाई भाई जिसको कहते हैं, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम सलाम की बिल्कुल उम्र भी बराबर ही थी तकरीबन, ठीक है, दोस्त भी थे, बड़े जिगरी यार किस्म के थे ये, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं जी हमने तो बाहर निकल के लड़ना है ना बस, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे, वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, मैं कसम खाता हूं उस जात की कि जिन्होंने आपके ऊपर किताब नाजिल करी है, कुरान नाजिल किया, मैं उनकी कसम, यानी अल्लाह की मैं कसम खाता हूं, ला अतअमुल यौमा ताअमन, मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा मैं आज कसम खा रहे हैं कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, हत्ता उजादिलहुम बिसैफी खारिज अल मदीना, जब तक कि मैं ना इन लोगों के साथ अपनी तलवार के साथ मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल के लड़ाई ना लड़ूं, उस वक्त तक मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, है ना, हंगर स्ट्राइक क्या कहते हैं, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल पे चले गए मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। सही है, तो ये क्या है, ये जोश है ना, जोश हो खरोश सब कुछ ही है इसके अंदर, खरोश भी है जोश भी है। अच्छा, एक और भी बुजुर्ग थे, नुमान बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो उन्होंने वो अंसारी साहबी थे, उन्होंने भी इस किस्म की बात करी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुहर्रिमनल जन्ना, आप हमें जन्नत से रोके नहीं। अजीब बात कर रहे हैं, सहाबी रसूल हैं, आशिक रसूल हैं, जन्नत के शहदाई हैं, लेकिन कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको आप जन्नत से महरूम ना कीजिए, राइट, आप हमें जन्नत का मौका मिल रहा है, नो डोंट टेक दिस चांस अवे फ्रॉम अस, ठीक है, आप हमें जन्नत से महरूम ना कीजिए। फवल्लजी बअसक बिल हक, इन्होंने भी कसम खा ली कि मैं उस जात की कसम खाता हूँ जिसने आपको हक दे करके हमारे दरमियान खड़ा किया है, राइट, यानी मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, लअदखुलन्नल जन्ना, मैं जरूर बिल जरूर जन्नत में दाखिल होऊंगा। यानी जिसको हम कहते हैं ना, मैं भी ये करके ही छोड़ूंगा, यानी मैं भी जन्नत में दाखिल होकर ही छोड़ूंगा, ये उन्होंने कह दिया, ठीक है ना। अब ये जो सहाबी थे, ये तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लम के चचा नहीं थे ना, नहीं वो तो चचा थे, है ना, चचा बहरहाल बुजुर्ग होता है बच्चे के सेम एज के भी हूँ, फिर भी चचा कर मतलब चचा होता है, तो चचा के सामने तो भतीजे जरा फिर भी ख्याल करते हैं। जब इन्होंने कहा ना, नुमान बिन अंसारी ने, बिन मालिक अंसारी उन्होंने ऐसी बात की, मैं तो जन्नत में दाखिल होकर ही छोड़ूंगा, तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लम ने पूछा कि अच्छा तो यानी हाउ, कैसे, यानी आप इतनी बड़ा जो दावा कर रहे हैं, किस बुनियाद पे आप ये दावा कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया, ले अन्नी, मैं इस बुनियाद के ऊपर ये कह रहा हूं, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल, के अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अन्नका रसूल अल्लाह, और ये कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, वला अफिरु यौमल यौम ज़हफी, ठीक है, और मैं ना लड़ाई से भागता नहीं हूं, ठीक है, यानी इस वक्त इन लोगों के ऊपर जो था ना वो जोश था। मैंने कहा मैं भाई, मैं जन्नत के बारे में कह रहा हूँ ना, लातुरल जन्नत लातुलन्नल जन्ना, मैं जरूर बिल जरूर जन्नत में दाखिल होऊंगा, उसकी बुनियाद यह है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला एक है, माबूद सिर्फ वही है, और आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, ठीक है ना, और ये कि मैं डरने वाला नहीं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम की बात देखें और सहाबा की बात, हम में से कोई इस किस्म की बात करे ना, अरे बोल रहा है ना, अब हम लोगों का क्या, हम तो बोलना, हमें तो खाली बोलना आता है ना, ठीक है, असल में करना जो है वो हमें, हम अक्सर इस तरह की अगर बात करें ना तो जो कहते हैं डेंगे मारना, क्या कहते हैं, डेंगिया मारना, ठीक है, सहाबा कराम डेंगिया नहीं मारा करते थे, ठीक है। देखें, इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और आगे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दे रहे हैं, सद्दकता, तुमने सच कहा, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रहे हैं कि तुम जो है ना वो यू आर नॉट जस्ट बूस्टिंग अबाउट इट, तुम सच कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारे दिल की बात, तुम्हारे दिल की आवाज, ठीक है, वाकई तुम मोमिन हो और वाकई तुम डरने वाले नहीं, ठीक है। और एक जगह पर उन्होंने है कि उन्होंने ये भी कहा कि लिअन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, और इस बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सद्दकता, तुमने सच कहा, ठीक है। तो इस तरह की जब बातें हुई ना, अच्छा इसके बाद ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मशवरे कर रहे थे ना, तो उस वहां पर एक और भी किस्म के लोग मौजूद थे जिनको क्या कहते हैं, मुनाफिकीन, ठीक है ना, क्योंकि मुनाफिकीन जो थे ये बदर के बाद बहुत सारे मदीना मुनव्वरा के ऐसे लोग मुसलमान हो गए थे ऊपर से, जो कि असल में मुसलमान नहीं होना चाहते थे, है ना, क्योंकि जब हुकूमत मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी साथ हो जाते हैं कि जो कि असल में आपका साथ नहीं देना चाहते, लेकिन हुकूमत की वजह से वो भी साथ हो जाते हैं, तो वो ऐसे लोग भी साथ हो गए थे। तो उनका जो सरदार था ना, वो था अब्दुल्ला बिन उबई, सरदार, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का सरदार, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम कहते नहीं थे उस वक्त कुछ भी कि भाई ये तो काफिर है, तो मुनाफिक है, वो सामने बैठा होता था और इन्वॉल्व रहता था चीजों के अंदर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा जो किया ना, तो उससे भी पूछा, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक से भी पूछा कि भाई तुम्हारी क्या राय है, कि हमें बाहर निकल के मुकाबला करना चाहिए कि अंदर बैठ करके मुकाबला करना चाहिए। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने जो है ना इस मौके के ऊपर बिल्कुल यानी ऑनेस्टली मशवरा दिया, ठीक है, उसने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदीना मुनव्वरा से बाहर ना निकलिए, ठीक है, खुदा की कसम जब कभी हम मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले हैं ना, तो हमने दुश्मनों के हाथों तकलीफ उठाई, ठीक है ना, यानी ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, बाहर निकल के लड़ना जो है ना ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहा है। ठीक है, आप मदीना मुनव्वरा की नाकाबंदी फरमा दें। नाकाबंदी का मतलब कि आप चारों तरफ से ना पहरा बिठा दें, अपने सोल्जर्स बिठा दें, ठीक है, और वो जो है वो एक तरह से एक फोर्ट्रेस सा बना दें। ठीक है, दुश्मन अगर बिलफर्ज मदीना मुनव्वरा में अगर घुस भी आया ना, तो मर्द उनका तलवार से मुकाबला करेंगे। यानी वैसे तो आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बिठा दें, ठीक है ना, ताकि वो अंदर ही ना आ सकें, लेकिन अगर वो बॉर्डर वालों को जो है वो मार करके अंदर घुस आए ना, तो हम अंदर बैठे हुए हैं, हम मौजूद हैं, हम तलवारों से उनका मुकाबला करेंगे, और हमारे बच्चे और औरतें जो है ना वो घरों की छतों के ऊपर चढ़ करके उनके ऊपर पत्थर बरसाएंगे, है ना, और तीर मारेंगे छतों से। ठीक है, तो ये बस इसके बाद फिर वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अगर वो भारी से वापस हो गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अंदर ही नहीं आ सके, लेकिन अंदर आ गए तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको। ठीक है, ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने ये वाला मशवरा दिया। ठीक है, तो इससे हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मशवरा किया करते थे, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला से हुक्म आया करता था, राइट। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बताते हैं, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं करने के लिए, अल्लाह ताला ऐसे कह रहे हैं, इसके बावजूद आप सरसरम जो है वो मशवरा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक बहुत बड़ी इससे सुन्नत मिल जाती है कि हमें भी अपने जो इस किस्म के कलेक्टिव काम होते हैं, चाहे घर के लेवल के काम हो चाहे बाहर के लेवल के काम हो ना, हमें भी अपने दोस्तों से, हत्ता के बड़ों से तो मशवरा करना ही चाहिए, छोटों से भी मशवरा करना चाहिए। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा छोटे थे कि बड़े थे? सारे छोटे थे ना। ठीक है, तो आप सरसरम छोटों से भी मशवरा कर रहे हैं, हालांकि आप सरसरम के पास वही आती है, फिर भी मशवरा कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें भी मशवरा करना चाहिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगरचे कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, लेकिन उससे भी मशवरा किया। क्या मतलब? क्या हमें काफिरों से मशवरा करना चाहिए या हमें काफिरों से मशवरा नहीं करना चाहिए? ठीक है, इसका क्या जवाब है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। ठीक है, कि दीनी मामलात में हम काफिरों से मशवरा नहीं कर सकते कि जी हमें जो है वो मस्जिद बनानी चाहिए कि मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, हमें उमरा करना चाहिए कि उमरा नहीं करना चाहिए, हमें नमाज पढ़नी चाहिए कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, या हमें जो है वो सुन्नत लिबास पहनना चाहिए कि हमें सुन्नत लिबास, ये सारे ये दीनी मामलात हैं, इनमें काफिरों से मशवरा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो दुनियावी मामलात हैं कि भाई दुनिया के अंदर कोई काम करना, मिसाल के तौर पर आपको सड़क बनानी है, ठीक है, अब मुसलमानों को अगर सड़क बनाना नहीं आता तो आप किसी काफिर से, जिसको के रोड कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी पता है, आप उनसे जाकर के रोड कंस्ट्रक्शन सीख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी इस किस्म के मामलात हों जो कि काफिर के पास ज्यादा नॉलेज है, तो आप उनसे जो है वो चीजें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मामला क्या था, यहाँ पर अगरचे कि बाहर ऐसा लगता है कि भाई ये तो जिहाद था, राइट, ये काफिरों से लड़ाई करनी थी, तो ये तो एक दीनी मामला है, तो दीनी मामले में नबी अलैहिस्सलाम ने काफिर से कैसे मशवरा कर लिया? नहीं, ये आप इससे मशवरा नहीं कर रहे थे कि बताओ हमें उनसे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, ये को थोड़ी मशवरा किया, राइट, ये तो नहीं पूछा ना उनसे कि बताओ मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। भाई ये तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा कि लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, इससे क्या मशवरा कर रहे हैं कि हमें मेथड क्या यूज करना चाहिए लड़ने, ठीक है ना, जस्ट द वे ऑफ फाइटिंग। तो वे ऑफ फाइटिंग तो ऐसे ही है कि जैसे कि आप जो है वो किसी काफिर से अगर आपकी लड़ाई हो जाए कि आपके मुसलमान मुल्क की, तो अब जो है वो आप काफिर से जो है वो अगर कोई फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं, है ना, तो फाइटर प्लेन क्यों खरीद रहे हैं भाई? क्योंकि आपने उनसे सीखा है कि भाई फाइटर प्लेन्स को यूज करके आप अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं, राइट। टैंक्स जो है वो आप खुद नहीं बना सकते अगर अपने मुल्क में, तो किसी नॉन मुस्लिम मुल्क से जो है वो आपने टैंक्स खरीद लिए, तो टैंक्स क्यों खरीदे? क्योंकि भाई दिस इज हाउ यू विल फाइट द नॉन मुस्लिम्स, है ना, योर एनिमी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो जायज है नॉन मुस्लिम्स के साथ करना। ठीक है, दुनियावी उमूर हम उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब्दुल्ला बिन उबई ने ये मशवरा दिया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में इसकी तरफ हम रिफर करेंगे कि उसने क्या मशवरा दिया था। ठीक है, अच्छा, हमजा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ऐसी बात करी, और नुमान बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ऐसी बात करी, और एक और भी बड़े बुजुर्ग साहबी थे साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने भी कहा कि हमने बाहर निकल करके लड़ना है, हमने तो शहीद होना है और हम नहीं छोड़ेंगे इनको, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नबी अलैहि सलाम जो है ना वो तैयार हो गए, आपसे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। ठीक है, बिकॉज दीज पीपल वर लाउड, है ना, बाकी साहबी जो थे जिन्होंने मशवरा दिया था कि अंदर ही रह करके हमें लड़ना चाहिए, दे वर नॉट लाउड इनफ. उन्होंने मशवरा दिया लेकिन आराम से मशवरा दिया, सहूलत से मशवरा दिया. दीज पीपल वर लाइक बहुत ज्यादा जोश और खरोश, बोल रहे हैं, कसम खा रहे हैं, अल्लाह की कसम मैं नहीं छोड़ूंगा ये वो, राइट. तो नबी अलैहिस्सलाम ने अजम कर लिया कि ठीक है भाई, इन लोगों का शौक शहादत है और दीनी जज्बा है, जन्नत पाना चाहते हैं, कोई हराम चीजें कोई थोड़ी है, सारी की सारी जायज और बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है. तो आप ने अजम कर लिया. ये जो सारी बात हो रही थी ना, ये हो रही थी जुमे के दिन में, क्योंकि जुमे की रात को तो वो मैसेज मिला था ना, जुमे रात को. अब जो है वो जुमे की सुबह को फजर के बाद जो है ये सारे मशवरे हो गए. फिर उसके बाद जो है वो जुमा का टाइम हो गया, ठीक है. तो जुमे के टाइम में फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जुमा पढ़ाया, वाज दिया. वाज के अंदर आप ने जिहाद और कतार और इनके फजाइल बताए, जन्नत हासिल ऐसे होती है जो शहीद होता है उसको ऐसे जन्नत के अंदर मुकामात मिलते हैं वगैरह वगैरह. सहाबा को बहुत यानी जन्नत का शौक दिलाने के लिए जिहाद की तरगीब दी और फिर तैयारी का हुक्म दिया, ठीक है. तो सहाबा तो खुश हो गए. अब जो है वो मौका मिला है, दुनिया से हमें हमारी जान छूटेगी और जन्नत में जाएंगे, ठीक है. इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जुमे के बाद जो है लोग खाना वाना खाते हैं, टाइम जल्दी पास हो जाता है. उसके बाद फिर ना असर का टाइम हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी मस्जिद नबी के अंदर और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए, यानी अपने घर के अंदर, जो भी गालिबन आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा वाला हुजरा होगा या किसी और उम्मातुल मोमिनीन में से. अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों जो है ना वो हुजरे के अंदर दाखिल हो गए. फ्रॉम सूरह हुजरात, ठीक. ये दोनों तो अंदर दाखिल हो गए. अब नबी अलैहिस्सलाम ने अंदर तैयारी करनी थी, इमामा शरीफ बांधना था, जरा पहननी थी और पूरा क्या कहते हैं टकअप, आज सुबह भी टकअप होना था जरा, है ना. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करने के लिए अंदर. अच्छा, अब बाहर जो है ना ये सारे के सारे जो सहाबी थे ना जिनसे मशवरा हुआ था और जो सारी बातें कर रहे थे ये लोग बाहर थे, ठीक है. अब इन दोनों के दरमियान आपस में बात शुरू हुई और वो जो बुजुर्ग सहाबी थे जिन्होंने ये मशवरा दिया था कि हमें मदीना मुनव्वरा के अंदर ही रहना चाहिए ना, उन्होंने जो है ना इन नौजवान सहाबा को कहना शुरू किया कि भाई ये क्या किया तुम लोगों ने, है ना, ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके ऊपर तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है, तो तुमने जो है ना, हालांकि तुम्हें अंदाजा था कि ये नहीं चाह रहे हैं बाहर निकलना. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह गई, वो क्या कि ये जो रात थी ना, इससे पहली वाली जो रात थी जुमे की रात, इसमें जब नबी अलैहिस्सलाम सोए ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आए, ठीक है. उस ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना एक मजबूत जिरह बड़ी जबरदस्त किस्म की आर्मर पहने हुए, ठीक है, और ये देखा कि एक गाय है जो कि जबह की जा रही है, ठीक है, और ये देखा कि मेरे हाथ में एक तलवार है और मैंने जो है ना वो अपनी तलवार को ऐसे करके हिलाया, तो हिलाने से तलवार का जो एज था ना वो दूसरी तरफ का जो शार्प एज होता है वो टूट गया, ठीक है, तलवार का एक टुकड़ा टूट करके नीचे गिर गया, ठीक है. उसके बाद फिर मैंने तलवार को दोबारा से हिलाया, जब दोबारा से हिलाया ना तो वो तलवार जो है वो पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई, शार्प हो गई, ठीक है. तो नबी अलैहिस्सलाम फजर के वक्त जो है वो सहाबा कराम को ख्वाब सुनाया भी करते थे और सहाबा से भी पूछा करते थे कि भाई तुम लोग सुनाओ, क्या तुम लोगों ने अगर कोई किसी ने ख्वाब देखा है तो वो बताओ, ठीक है. सहाबा ख्वाब बताया करते थे, नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब की कोई ताबीर बताया करते थे, नबी अलैहिस्सलाम अपना भी ख्वाब बताया करते थे. तो फजर में ना नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को गालबन फजरी के टाइम पे, क्योंकि सारी बातें उसी वक्त हो रही थी, इन लोगों को ख्वाब बताया और साथ साथ चूंकि खुद ख्वाब देखा था तो अपने ख्वाब की ताबीर भी बताई. अब की ताबीर ये करी कि जो जरा पहने हुए है ना, आर्मर पहने हुए, इसका मतलब ये है कि हम मदीना मुनव्वरा में रह करके मुकाबला करेंगे और मदीना मुनव्वरा जो है ना ये हमारा आर्मर होगा, ठीक है ना. मदीना मुनव्वरा की जो बॉर्डर्स हैं वो हमारे लिए एक जिरह होगी, गोया के प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है. और ये जो गायें जबा हो रही है इसका मतलब ये है कि मेरे कुछ सहाबा जो है ना वो शहीद हो जाएंगे, ठीक है. और जो ये तलवार मैंने हिलाई है जिसका कि एक टुकड़ा गिर गया है ना, तो इस टुकड़े के गिरने का मतलब यह है कि कुछ जो है ना वो मुश्किलात पेश आएंगी, ठीक है. सहाबा जो है वो शहीद होंगे और जो है वो کچھ مشکلات وغیرہ پیش آئیں گی. تلوار ٹوٹ گئی نا بھائی, ٹھیک ہے. پھر جو دوسری دفعہ تلوار ہلائی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ تو مشکلات پیش آئیں گی لیکن بعد میں جو ہے نا وہ بڑی زبردست قسم کی کامیابیاں ملیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ خواب میں چار چیزیں دیکھی اور ان چار چیزوں کو صحابہ کو بھی بتا دیا. صحابہ کو آبویسلی آپ سے سنا فرما رہے ہیں کہ مدینہ منورہ ہمارے لیے ایک پروٹیکٹیو فورٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت بھی بتا دی کہ بھئی گویا کہ یہیں پہ رہ کر کے ہی لڑنا ہمارے لیے مناسب ہے. تو اب ان صحابہ نے آپس میں باتیں شروع کریں تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم لوگوں نے کیا کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہیں پہ رہ کر کے ڈیفینڈ کریں اور تم لوگوں نے آ کر کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ فورس کیا ہے کہ وہ نکل کر کے باہر پہ آ کر کے لڑیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے نا, ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس ہیں, صحابی ہیں, ہم تو ماننے والے لوگ ہیں, ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. تو جب ان صحابہ نے ان لوگوں کو سمجھایا نا تو ان کے بات سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ پہلے ان لوگوں کے اوپر ایک جوش غالب تھا, جوش میں آ کر کبھی آپ ایسی باتیں کر جاتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, صحابہ سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں, ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کی اچھی بات کیا تھی کہ جب نبی علیہ السلام ان کی غلطی کی اصلاح کرتے تھے وہ فوراً مان لیتے تھے. جیسے پہلے ہم نے بات کری تھی نا کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہونے والی تھی, اوس اور خزرج کے درمیان ہے نا, بالکل بیٹل شروع ہونے والی تھی, نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور سارا مسئلہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً مان لیا کرتے تھے. لیکن صرف یہ نہیں, وہ تو پہلے واقعے سے ہم نے یہ سبق لیا, اس واقعے سے ہم کیا سبق لیتے ہیں, کوئی آپ میں سے بتائے. اور ہاں بتائیں, اور آپ ریحان کچھ کہیں. ہاں یہ ساری باتیں اس کے اندر, اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب صحابہ کسی دوسرے صحابی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے, ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام کے سامنے تو چلو بات نہیں کری, اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ان لوگوں کی بات چل رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر چلے گئے نا تو اب انہوں نے سمجھانا شروع کیا, ٹھیک ہے. سورہ عصر ماشاءاللہ سب کو یاد ہے, سورہ عصر نہیں, ہاں سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ صحابہ کی صفات بیان کر رہے ہیں نا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہے نا. تمام انسان خسارے میں ہے, تمام انسان اور ایٹ اے لاس, ٹھیک ہے نا, سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. تَوَاسَوْا بِالْحَقِّ کا کیا مطلب ہے؟ تَوَاسَوْا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اچھی باتیں سمجھاتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ کوئی گندی کام کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ مل کے گندا کام کرنا شروع کر دیتے, رائٹ. اکثر ہم لوگ کرتے ہیں, آپ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے. یہ بہت بری بات ہے, یہ صحابہ والی کوالٹی نہیں ہے, یہ شیاطین والی کوالٹی, ٹھیک ہے. کہ اس نے گندا کام کیا, اس نے بری باتیں شروع کریں, اس نے کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کیا, ہم بھی اس کے ساتھ مل کر کے تالیاں بجانا شروع ہو گئے, ہم بھی جو ہے اس کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہ بیک بائٹنگ کرنا شروع ہو گئے, ہم بھی مل کر کے غیبت کرنا شروع ہو گئے, ہم بھی کسی کو بلی کرنا شروع ہو گئے. کیونکہ وہ بلی کر رہا تھا, اس نے ہی واز دا فرسٹ ون. ہمارا جواب کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے, تو ہمارا جواب ہوتا ہے وہ میں نے کوئی تھوڑی شروع کیا تھا, شروع تو اس نے کیا تھا. وہ بھائی شروع اس نے کیا تھا تو آپ کو اس کو منع کرنا چاہیے تھا, رائٹ, منع کرنا چاہیے تھا, آپ تو اس کے ساتھ شامل ہو گئے. آئندہ کریں گے, مجھے پتا ہے کس نے کیا کیا ہے, رائٹ. بھائی نہیں کیا کرو یار, ٹھیک ہے. تو اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو ہم ایمان والے ہیں, ہمارا تو کام ہے اس کو روک لینا, رائٹ. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھو اس کو اپنے ہاتھوں سے روک, ٹھیک ہے. اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو, یعنی اس کو سمجھاؤ, اس کو منع کرو, ٹھیک ہے نا. اور اگر منع بھی نہیں کر سکتے, وہ کوئی اتنا کلی قسم کا انسان ہے, کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے, بہت وہ ہے, منع بھی نہیں کر سکتے ورنہ اٹھا آپ ہی کو مارنا شروع کر دے گا, تو بھائی اس کی برائی کو دل میں برا سمجھو, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی تھوڑی کہ اس کی برائی کے ساتھ تم شامل ہو جاؤ, تم بھی برا کرنا شروع ہو جاؤ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم بھی برا کرنا شروع ہو جاؤ گے نا تو آپ سے کے فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہی ختم ہو جائے؟ رائٹ, تو برائی میں انوالو ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ ایمان چھوڑ دیا ہم نے. ٹھیک ہے, تو بالکل بھی نہیں, اس میں انوالو نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آؤٹ تو اس وقت میں کسی کو نہیں کروں گا, لیکن سبھی تقریباً اس قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے شکایتیں ملتی ہیں, مجھے آپ کے پیرنٹس سے شکایتیں ملتی ہیں, کبھی کسی کے پیرنٹس سے کسی دوسرے کے بارے میں شکایت مل رہی ہے, کبھی اس کے پیرنٹس سے اس کے بارے میں شکایت مل رہی ہے, کبھی اس کے پیرنٹس سے اس کے بارے میں شکایت مل رہی ہے. کیا ہے یہ؟ رائٹ, ہم ایمان والے ہیں, اور خالی ایمان والے بھی نہیں, بہت سارے مسلمان ہیں بھی, لاکھوں مسلمان رہتے ہیں شہر کے اندر, پوری دنیا کے اندر. ہم تو بھائی اپنے مشائخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم تو دیندار کہلاتے ہیں. رائٹ, ہم میں سے کتنے سارے قرآن مجید کے حافظ ہیں؟ کتنے آپ میں سے حافظ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا. ماشاء اللہ, ایک ان سے ہاتھ نہیں کھڑا ہو رہا. ان کا کھڑا ہو گیا, ان کا کھڑا ہو گیا, ان کا کھڑا ہو گیا, ان کا کھڑا ہو گیا. کاؤنٹ کریں گے ماشاء اللہ, ایک دو تین چار پانچ چھ دس پندرہ تو حافظ ادھر موجود ہوں گے ماشاء اللہ, اور باقی جو نہیں ہے وہ حافظ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, حافظ بھی بن رہے ہیں قرآن مجید کے, اور قرآن مجید کی خلاف ورزی بھی. رائٹ, قرآن مجید کے حکموں کی نافرمانی بھی. یہ کس قسم کا حفظ ہے؟ یہ حفظ نہیں ہے. حفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رٹنا. ہاں جی, حفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رٹنا. جیسے طوطا رٹتا ہے, طوطا رٹتا ہے نا, یہ ہے حفظ کا مطلب. نہیں, حفظ کا مطلب رٹنا نہیں. کیا مطلب ہے حفظ کا؟ نہیں, حفظ کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنا, قرآن مجید کی حفاظت کرنا. کیسے حفاظت کرنا؟ کتاب کو سنبھال کر کے رکھنا, کہیں گر نہ جائے. گر جائے گا تو اتنے اس کے برابر کا آٹا صدقہ کرنا پڑے گا. یہی آتا ہے ہمیں, آٹا کتنا صدقہ کرنا پڑے گا. آٹا صدقہ کیا معاف ہو گیا سارا کا سارا؟ نہیں, حفظ کا مطلب صرف قرآن مجید کی کاپی کا حفاظت کرنا نہیں, قرآن مجید کے حکموں کی حفاظت کرنا. یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت. آپ نے قرآن مجید کے حکموں کی حفاظت نہیں کری تو طوطے کی طرح رٹ کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, بلکہ ایک تو حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید الٹا لعنت کر رہا ہوتا ہے ایسے شخص کو کہ جو کہ قرآن مجید کو پڑھ بھی رہا ہے اور اس کے حکموں کی نافرمانی. کیا ہم یہ چاہتے ہیں قرآن مجید ہم پر لعنتیں کرے؟ قیامت کے دن قرآن مجید جو ہے نا وہ ایک انسان بن کر کے آئے گا, انسان بن کر کے آئے گا, اور وہ انسان جو ہے نا پھر کہے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے جو ہے نا میری قدر نہیں کری. ٹھیک ہے نا, انہوں نے میری قدر نہیں کری, انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ بہت برا معاملہ کیا ہے, ان کو نہیں چھوڑ گیا. قرآن مجید جو ہے نا پھر لوگوں کو جہنم میں داخل کروائے گا قرآن مجید. ٹھیک ہے, تو ہم قرآن مجید کا حفظ کر رہے ہیں نا, تو ہم قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے بنے, حفاظت کرنے والے. یہ اصل حفظ ہے قرآن مجید کا. ٹھیک ہے بھائی, سارے وعدہ کرتے ہیں نا, ارادہ کرنے پہ ایک نگی ملتی ہے. ٹھیک ہے, خاموش اس وقت کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کر رہے ارادہ, چپ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے, کیونکہ پتہ ہے میں نے کرنا ہی نہیں ہے اس پہ, اس کے اوپر عمل. ٹھیک ہے, آئندہ مجھے کوئی شکایت نہ ملے. اب اما سے جا کے کہیں اما خبردار آپ نے میری شکایت کری, کیونکہ حضرت کہہ رہے تھے کہ میری شکایت نہ ملے, ہے نا. ابا سے بولنا, ابا اگر آپ نے شکایت کری نا میں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, شکایت تو ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں کسی نہ کسی سے. ٹھیک ہے, تو بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم چھپ نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ نے شکایت کروا دینی ہے, تو ہم حرکتیں ایسی کیوں کرتے ہیں کہ جن کے اوپر پر اللہ تعالیٰ شکایت کروائیں کسی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, ٹائم کتنا ہو گیا؟ اچھا, تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو سمجھایا کرتے تھے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. نبی علیہ السلام معافی مانگ لیں, آپ علیہ السلام معاف کر دیں گے, رحیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو سب تیار ہو گئے, ہاں ہم سے واقعی غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے نا, لیٹس آسک فار فورگیونیس. تو نبی علیہ السلام پھر گھر سے جو ہے نا وہ تیار ہو کر کے باہر نکلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہے پہنی ہوئی تھی, ایک نہیں جیسے ایک جیکٹ پہنے ہوئے نا, ٹھیک ہے نا, ایک جیکٹ اندر اس کے اوپر دوسری جیکٹ, ٹھیک ہے نا, یا سویٹر پہنتے سویٹر کے اوپر جیکٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیکٹ اندر پہنی ہوئی تھی, آرمر लोहे वाली जैकेट और एक उसके ऊपर पहनी हुई थी। अच्छा मजे की बात यह है कि हम लोग तो इंसानों के नाम रखते हैं, ठीक है, वो उस जमाने के लोग जो थे ना वो जानवरों के भी नाम रखते थे, ठीक है, घोड़ों के नाम होते थे, चले आज भी बहुत सारे लोग घोड़ों के नाम रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग घोड़ों के नाम रखते थे, जानवरों के नाम रखते थे, ऊंटों के नाम, नबी रसूलुल्लाह ऊंटनी का क्या नाम था, कसवा, ठीक है ना, नाम था ऊंटनी का, इसी तरीके से चीजों के भी नाम रखा करते थे, ठीक है। तो ये जो जरह आप ने पहनी थी ना उनमें से एक जरा का नाम था जातुल फजूल, जातुल फजूल, फजूल वाली, ये फजूल हुआ ना, फजूल नहीं हुआ ना, ठीक है, फजल वाली, ठीक है, और दूसरी का नाम था फिल्वा, ठीक है, चांदी की बल्बन, सही है। तो दो जरे पहनी हुई थी, जातुल फजूल और फिल्वा। अब जब आप बाहर निकले ना तो इन सहाबा ने जिन्होंने आप को कहा था कि हम तो नहीं छोड़ेंगे बाहर निकलेंगे, तो इन्होंने सब ने आकर के ना अपोलॉजी करना शुरू करी, अपोलोजाइज करना शुरू किया और कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, आप जो है वो जहां भी जाएंगे जो भी आपका फैसला होगा हम उसके लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इन लोगों को जवाब दिया कि आप मैंने अब जरे पहननी है, ठीक है ना, और ये अल्लाह ताला का एक उसूल है कि अगर अल्लाह के नबी ने एक दफा अपने आप को जंग के लिए तैयार कर लिया ना और उसका अजम कर लिया, अब वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना, ये एक खास अल्लाह ताला ने एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है नबियों के लिए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस दिन वो प्रिंसिपल बताया इन लोगों को और कहा कि भाई अब तो हो गया, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर बी द रिजल्ट्स, वी आर गोइंग टू गो आउट एंड फाइट, ठीक है ना, ये मैं फैसला कर चुका हूं और मैंने जरे जो है ना वो पहन ली है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना ये जो दिन था वो 11 शवाल का दिन था। तो आप सल्लम जो है वो फिर यौम जुमा को नमाज असर के बाद तैयारी करने के लिए गए थे, फिर उसके बाद आप सल्लम जो है तैयारी करके बाहर निकले और फिर उसके बाद वहां से रवाना हुए और उहद की तरफ जाना शुरू किया। आप सल्लम उस दिन घोड़े के ऊपर सवार थे, ठीक है, उस घोड़े का नाम जो है वो नहीं लिखा हुआ, मुझे मालूम नहीं है। तो अब आप लोग माशाल्लाह जो यहाँ पे रहते हैं वो तो अक्सर मदीना मुनव्वरा जाते रहते हैं, जो बाहर के भी लोग माशाल्लाह अक्सर आते रहते हैं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो आप लोगों का अंदाजा होगा कि जो आप सल्लम का रोजा है वो मस्जिद नबी के बिल्कुल इस एंड पर है, ठीक है, और उहद की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल किबले डायरेक्शन के ऑपोजिट है, ठीक है। तो जब हम आज बाब मलिक फहद से जो सबसे बड़ा दरवाजा है ना वहां से जब बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएं तो उहद का पहाड़ आ जाता है, नजर भी आता है वहां से, ठीक है। तो आप सल्लम ने यहाँ से फिर चलना शुरू किया, घोड़े के ऊपर सवार हुए और चलना शुरू किया। तो चलते चलते जो है ना वो रास्ते में एक जगह आई जिसका नाम था मकाम शेखैन, ठीक है, शेखैन का मकाम। शेखैन का जो लफ्ज है ना ये काफी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, किसी को कोई अगर याद हो शेखैन किन को कहते हैं यार, किन किन को कहते हैं, माशाल्लाह ये आलम कोर्स पढ़ने वाले यही जवाब देंगे, ठीक है। तो फिका के अंदर शेखैन जो है वो इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह कहते हैं, और बुजुर्ग की जमा, नहीं बुजुर्ग की जमा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ दो बुजुर्गों को, ठीक है। अगर डिक्शनरी में देखा जाए ना तो लफ्ज शेख जो है वो डिक्शनरी के हिसाब से, लुगत के हिसाब से बूढ़े आदमी को कहा जाता, ठीक है। वैसे जो सबसे बड़े शेखैन कहलाते हैं वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये शेखैन कहलाते हैं। फिर ये अबू हनीफा भी शेखैन कहलाते हैं, और वैसे शेखैन का मतलब होता है दो बुजुर्ग, ठीक है। तो उसकी तफसील ये है कि जो मकाम शेखैन था ना यहाँ पे छोटा सा एक जो है कि पहाड़ टाइप की चीज थी और इसके ऊपर जो है ना वो एक यहूदी कपल रहता था, ठीक है, बूढ़ा यहूदी मर्द और उसकी बीवी बूढ़ी यहूदी औरत, दोनों अंधे थे, क्योंकि ज्यादातर उस जमाने में ये होता था कि जब आप बहुत बूढ़े हो जाते थे ना तो आंखें जो है ना वो खराब हो जाती हैं, इवन आज भी बूढ़े होने के बाद आंखें जैसे माशाल्लाह चश्मा लगता है, चश्मा लगने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसका इलाज ना कराते रहें और वो कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह ना कराते रहें तो आई साइड जो है वो जाहिर हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अक्सर बूढ़ों की उस जमाने में अंधे हो जाते थे, तो ये दोनों अंधे थे और ये दोनों बूढ़े थे, तो इन दोनों मियां बीवी की वजह से ना उस जगह का नाम मकाम शेखैन था, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम शेखैन के ऊपर जाकर के पड़ाव डाला यानी लश्कर को रोका और वहां पर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूरे लश्कर का जायजा लिया और वही काम किया जो कि बदर में भी जब लड़ाई होने वाली थी तो उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर भी एक काम किया था, सबसे पहले काम किया वो क्या था, फिल्टर। अच्छा, और
जी
दाऊद भाई आज काउंट किया था, और काउंट किया था, हाँ काउंट भी किया था, लेकिन काउंट के साथ साथ एक और भी चीज, सफ़े तो बिल्कुल आखिर में क्या क्या तीर था वो सफ़े सीधे नहीं, सफ़े तो आखिर में बनती है जब बिल्कुल लड़ाई शुरू होने वाली हो, जासूसी तो लड़ाई से पहले होती है, ठीक है, यानी बिल्कुल शुरू में जब दुआ करें। माशाल्लाह बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ काउंट किया था, लेकिन काउंटिंग के दौरान एक और काम भी हो जाता है, वो क्या कि जब काउंट करते हैं ना नबी अलैहिस्सलाम सबको देखते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि भाई कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि हमारे लश्कर के अंदर 1,000 मुसलमान निकले थे, ठीक है, या 1,000 लोग मदीना मुनव्वरा से निकले थे लड़ने के लिए काफिरों से। तो आप ने देखा कि इसके अंदर जो है ना वो 8 ऐसे हैं जो कि अभी छोटी उम्र बच्चे हैं, ठीक है। तो इनमें से एक का नाम था हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी, बाद में जाकर के ये मुसलमानों के लश्कर के लीडर भी बने थे, लेकिन उस वक्त जो थे ना बहुत इनकी कम उम्र थी। ये जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के मुंह बोले एक बेटे थे ना जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, कि ये जैद मेरा बेटा है, ठीक है, ये इनके बेटे थे उसामा। एक दूसरे उस जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु थे, वो भी बहुत छोटी उम्र के थे उस वक्त, ठीक है। तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु भी छोटी उम्र के थे, अब्दुल्ला बिन उमर, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, ठीक है, वो भी छोटी उम्र के थे। उसैद बिन जहीर और बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु, जैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु, इन तीन तो जैद बच्चे थे वहां पर, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आठों को, और आबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, इन आठों को जो है ना वो कहा कि भाई तुम लोग वापस जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अभी बालिग नहीं हुए हो या तुम लोग अभी बड़े नहीं हुए हो, ठीक है। किसी ने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने लिखा कि 17 सहाबी ऐसे थे कि जिनकी उम्र सिर्फ 14 साल या उससे कम थी, 14 या 14 से कम, तो उनको नबी अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनमें एक थे हजरत राफे बिन खदीज रज़ियल्लाहु अन्हु, ये खुदैज रज़ियल्लाहु अन्हु, राफे बिन खदैज, ये भी छोटी उम्र के थे, ठीक है। इन्होंने एक होशियारी दिखाई, वो क्या कि ये जो है ना अपने पाओं के पंजों के ऊपर ऐसे करके खड़े हो गए, ठीक है, तो ना उंगलियों पे खड़े हो जाते हैं अगर आप टिपटो, ठीक है, तो ये जो ऐसे करके खड़े हो गए ना, तो अब ये ऊंचे नजर आने शुरू हो गए, सही है। तो नबी अलैहिस्सलाम, देखें अल्लाह के नबी हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको देखा कि ये तो बड़े लंबे हैं, दूसरे बच्चे खड़े हुए हैं उनके मुकाबले में, तो आप ने उनको इजाजत दी कि ठीक है तुम यू स्टे, सही है। अच्छा, एक और जगह ये भी लिखा हुआ है कि इनको जो है ना वो तीर चलाने भी बड़े अच्छे आते थे, तो ये भी एक रीजन बन सकती है इनके इनको रखने की, और एक ये कि ऐसे करके खड़े हो गए, यानी चाहते थे ये लोग ना, ये सारे जन्नत चाहते थे, ठीक है, सारे आए हुए थे उधर। अच्छा, एक थे इनमें सुमरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, तो वो भी जो थे ना ये अबू ये राफे बिन खुदैज की ही उम्र के थे। तो सुमरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ना, उन्होंने अपने एक बड़े थे उनसे शिकायत करी कि ये क्या बात हुई, वो तो मेरी एज का ही है, जैसे आप लोग कहते हैं ना उसकी भी तो यही उम्र है, वो तो ये जैकेट नहीं पहन रहा, मैं क्यों जैकेट जैकेट पहनूं सर्दी में, ठीक है, जिस तरह के जैसे बच्चे बात करते हैं, उस जमाने के बच्चे भी ऐसी बातें क्या करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई उसको क्यों इजाजत मिल गई, मैं भी तो उसी की उम्र का हूँ और मैं तो ज्यादा ताकतवर हूँ उससे, ठीक है, बिल्कुल आप जैसी बात है, सही है, मैं तो उससे ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं अगर अगर लड़ाई हो ना उसके साथ तो मैं तो उसको पिछाड़ दूंगा, मैं तो उसको गिरा दूंगा, ठीक है। तो जब ये बात हुई ना, तो उन्होंने जो उनके बड़े थे मुरी बिन सनान, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से यही बात आके कह दी कि आपने अब ये राफे बिन खुदैज को इजाजत दे दी, और मेरा जो ये बच्चा है ना, तो इसको जो है ना आप वापस भेज रहे हैं, हालांकि ये तो ताकतवर है, ये तो राफे को भी पिछाड़ सकता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना फिर राफे और सुमरा दोनों की कुश्ती करवा दी वहीं पर खड़े खड़े, है ना, उधर ही कुश्ती करी। तो उस कुश्ती के अंदर जो है ना वो राफे को सुमरा ने नीचे गिरा दिया, ठीक है, जैसे वो कुश्ती में नीचे गिराते हैं फिर उसके बाद चढ़ करके 1 2 3 तो कुश्ती हुई, इनको नीचे गिरा दिया और इनको भी इजाजत मिल गई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम उनको इजाजत दे चुके थे और इन्होंने उनको गिरा दिया, तो इसका मतलब ये ज्यादा पावरफुल है, दोनों की इजाजत, माशाल्लाह दोनों शहादत के लिए तैयार, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके हम बात खत्म करते हैं आज की, और बाद में अगली क्लास में इंशाल्लाह, वो ये कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला जो है ना, उमर फारूक रजवान के बेटे, ठीक है। तो इन्होंने ना फिर किसी से अपने बेटे को, जब ये बड़े हो गए तो इनके बेटे का नाम था नाफे, ठीक है, उनसे कहा कि जब गजवाए बदर हुआ था ना तो उस वक्त मैं 13 साल का था। नबी अच्छा, गजवाए बदर में तो मुझे पता ही नहीं चला कि लोग किधर जा रहे हैं, तो मैं तो जा ही नहीं सका उसके अंदर, ठीक है। जब गजवाए उहद हुआ तो 1 साल के बाद मैं 14 साल का हो चुका था, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे गजवाए उहद से भी वापस कर दिया। फिर अगले साल मैं 15 साल का हो गया, और अगले साल कौन सी वाली जंग हुई थी, गजवाए खंदक हुई थी, उससे नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे वापस नहीं किया, ठीक है। तो अब जो फुकहात है ना, उस जमाने के एक बड़े फकीह थे जिनका आप पूरा सुन चुके हैं 50 क्लास के अंदर, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, ये बड़े एक तो अमीर भी थे और यानी खलीफा भी थे, और साथ साथ ये फकीह भी बहुत थे, बड़े मुहद्दिस भी थे उमर बिन अब्दुल अजीज, ठीक है। तो इन्होंने जब नाफे बिन अब्दुल्ला बिन उमर से ये वाली बात सुनी ना, तो इन्होंने फौरन जो है ना वो कहा कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि 15 साल की उम्र जो है वो बड़ी उम्र है, अब आप बचपन से बाहर निकल गए, और 14 मीन्स बच्चा, ठीक है, 14 का मतलब है बच्चा, 15 का मतलब है बड़ा, क्योंकि नबी अलैहि सल्लम ने ये डिस्टिंक्शन करी, ठीक है। तो इससे जो है ना फिर हमारे फुकहा ने कहा कि जी अगर कोई 15 साल का हो जाता है ना, बस अब वो हो गया बड़ा, बड़ा का मतलब अब जो है वो चिल करे बाहर जाकर के, है ना, जिधर जाए नहीं, बड़ा का मतलब ये है कि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसकी वो बढ़ा ली जाएगी, ठीक है, अब उसको बच्चा समझ के छोड़ा नहीं जाए, ठीक है ना। तो इतना खुश नहीं हो कि जी अब तो मैं बड़ा हो गया, मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ, सही है, खैर वो भी होता है, लेकिन अब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते, ठीक है, अब आप बच्चे नहीं है, अब आपको बच्चा समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, सही। खैर किसी को कोई सवाल पूछता हूँ, यहाँ तो किसी ने कुछ लिखा हुआ भी है तो वो हम देख लेते हैं। 7 खुशनसीब घोड़े जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, माशाल्लाह, सकब मुर्तजिज लहीब नजाज जलावज फर्स और वर्द, माशाल्लाह, 7 घोड़े और उन 7ों के नाम भी मौजूद हैं, ठीक है, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन 7ों में से कोई एक होंगे जिनके ऊपर बैठ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू जी।
अल्लाह वाला
किसकी वजह से?
जब जाऊंगा
अच्छा, मुमकिन है कि उसने इस रीजन से दिया हो, और उलमा ने मुख्तलिफ रीजंस बताए हैं, ठीक है, लेकिन हमने ऑनेस्ट मशवरा इस वक्त इसलिए कहा क्योंकि जो बुजुर्ग सहाबा थे ना उनका भी यही मशवरा, जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट लोग थे ना, ठीक है। तो अब अगर ये किसी किस्म का मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो इसने कोई ऐसा उल्टा मशवरा देना था कि जिससे मुसलमानों को नुकसान हो, ठीक है, लेकिन इसने जिस बात को सही समझा उस वक्त कि भाई हाँ हम लोगों के माजी में ऐसे ही है, अगर ये झूठ बोल रहा होता दूसरे सहाबा भी तो मौजूद थे ना, वो कहते नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता था पहले, ये बोल रहा है कि ये बाहर निकल के हमें नुकसान होता था, अंदर बैठ करके हमें फायदा हुआ है। तो इस अंदाज से अगर देखा जाए तो उसने एक जेन्युइन किस्म का जिसको मशवरा कहते हैं ना तो वही दिया था। जो बच्चे थे उन्हें वापस भेजा था, हाँ जो बच्चे थे उनको वापस भेज दिया था। लड़कियों में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एज भी 15 होती है। माशाल्लाह, ये सवाल जो है ना मेरे ध्यान में गया था जब मैं ये पढ़ रहा था कि लड़कियों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एज, यानी जब वो बच्चे की उम्र से बाहर निकल जाए तो वो क्या होती है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है ना वो एक्सप्लिसिटली तो अभी नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक जनरली स्पीकिंग वो ये है कि लड़कियों ने बैठने जंग नहीं करनी होती, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने जंग वाली जिम्मेदारी जो है ना वो लड़कियों के ऊपर नहीं डाली है। कान खोल के इस बात को सुन, अगर कोई आपको इसके खिलाफ कहता है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है ना भाई, मरहम पट्टी करना एक अलग चीज होती है, और एक्चुअली जाकर के फाइट करना जो है ना ये एक अलग चीज होती है। इस किस्म के वाकयात भी ऑथेंटिक नहीं है कि जिसके अंदर वो सहाबिया ने जाकर के जंग लड़ी, उन्होंने जाकर के जो घोड़े के ऊपर इतने लोगों को मार करके आ गई, ये ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बाद में चीजें कुछ किताबों में गलत चीजें भी शामिल की गई हैं। बहरहाल तो जंग वाला मसला तो लड़कियों के साथ वैसे भी नहीं है, ठीक है। تو لڑکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو دوسری ذمہ داریاں دی ہیں, تو ان ذمہ داریوں کا جو تعلق ہے نا وہ ان کے بالغ ہو جانے سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب بالغ ہو گئیں تو اس کے بعد پر ان کے اوپر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا ایک یہی جواب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تو ایک جنگ والی پوائنٹ ہے. اچھا, لڑکے بھی 15 سے پہلے بھی بالغ ہو سکتے ہیں, 13 میں بھی کوئی لڑکا بالغ ہو سکتا ہے, 12 میں, 14 میں, رائٹ. لیکن یہاں پر ایک ڈفرنٹ قسم کی ریسپانسبلٹی والی ایج کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو ہے 15 سال از دا ڈیڈ لائن, اس کے بعد کسی کو بچہ نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا. ایون اگر کوئی بچہ, کوئی لڑکا اس سے پہلے بالغ نہیں بھی ہوا نا, تو 15 سال کب ہو گیا, بس اب تم بالغ ہی, ٹھیک ہے نا. اب نو مور ایکسکیوزز, رائٹ. اب یہ نہیں کہ میں تو بالغ نہیں ہوں تو اچھا مجھے نماز جو ہے وہ اگر چھوڑ بھی دی تو کم از کم, نہیں نہیں, اب تم ہو چکے ہو بالغ, ٹھیک ہے. تو 15 ایک طرح کی ڈیڈ لائن کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا کٹ آف لمٹ.
میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ
ہاں وہ آ گیا تھا نا اندر, نہیں یہ تو پکی بات ہے, تو ڈیفنسو تھا وہاں پہ آ کر کے, وہ اندر داخل ہو گیا تھا, اس کو ڈنڈے سے بھی مارا تھا, اور وہی جو چھتوں کے اوپر سے جا کر کے اس کے گرم پانی بھی پھینکا تھا ان لوگوں کے اوپر. ہم اس کی بات نہیں کر رہے, یہ ڈیفنس ہے. آپ اپنے گھر کے اندر ہی ہیں, گھر کو بچانے کے لیے تو بھائی آپ کلاشن کو اٹھا کر کے بھی مار سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت سارے خواتین نے اس طرح سے کیا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہم بھی لڑیں گے جا کر کے نا, لڑوں تو وہ بھائی جب ضرورت پڑے گی, خدا نہ خاصا ایسی سچویشن ہو گئی کہ کافر جو ہے وہ غالب آ رہے ہیں, اس وقت جو ہے نا وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے, اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اس وقت عورت بھی لڑ سکتی ہے اور لڑے گی. He has to protect herself. صحیح ہے, یہ نہیں کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا خالی, ٹھیک ہے. جیسے وہ پہلے ایک کلاس میں اللہ اکبر, خاتون نے اللہ اکبر کے نعرے ہی مار دیے تھے اس کے بعد, تو وہ تو عورت نے بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہ کچھ اور بات کریں, فیمنزم والی بات کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں, چونکہ وہ لڑتی تھی تو ہم بھی بارگن آرمی جوائن کریں گے, ایسا نہیں ہے کوئی. جی نہیں دیکھا ہوگا, چادر وادر اپنا شلوار تھوڑی نیچے کر لی ہوگی تاکہ کسی میں نظر نہ آئے, کچھ بھی کر لیا ہوگا, ٹھیک ہے. خیر ان کی نیت تھی, اللہ تعالیٰ قبول کر لیا ان کو ماشاء اللہ, ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی قبول کر لیا, سمرا بن بندہ کو بھی قبول کر لیا ان کے بہانے, ٹھیک ہے. وائی ناٹ گرلز اٹ از جنگ, Why not girls? It is jung. چلے آپ تو شوق ہو رہے جائیں جنگ شنگ لڑ کر کے آئے, ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا ہے, ہم نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے, یا ہم نے کرنا ہے کہ جہاں پہ زیادہ مزے آ رہے ہیں ادھر جائیں, مزوں پہ تو نہیں, مزے تو جنت میں ملیں گے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے وائی ناٹ, اب آپ کہیں گے جی ہم بھی کہیں گے وائی ناٹ بوائز, وائی آر گرلز ہیونگ دا پارٹی, وائی ناٹ بوائز, ٹھیک ہے. تو یہ وائی ناٹ والا سوال تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھائی ہر چیز کے اوپر ہی وائی ناٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وائی می یا وائی ناٹ می, ٹھیک. ہمارا دین سکھاتا ہے کہ نہیں, یہ وائی ناٹ می اور وائی می والا مسئلہ یہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین یہ ہے کہ واٹ اللہ ہیز گیون اور آرڈینڈ, ٹھیک ہے جی. یہ دونوں کتنے سال کے, لکھا ہوا نہیں ہے کتاب کے اندر, ہو سکتا ہے کسی دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہو, لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ بس بارڈر لائن پر ہی ہوں گے نا, یا یعنی 14 ہی کے ہوں گے, کیونکہ 15 پر تو ویسی اجازت تھی, ٹھیک ہے. تو اب یہ بس بارڈر لائن پر ہی تھے, تو ہوتا ہے کہ 14 سال میں آپ کی ہائٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں اس کے اندر. انہوں نے کہا بھی تھوڑا سا ہی تو رہ گیا, ذرا اونچے کھڑے ہو جائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا, کوالیفائی کر جائیں گے. جی لڑائی کوئی تھوڑی کروائی تھی, کشتی کروائی تھی. کشتی اور لڑائی میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے خود کشتی کری ہے, خود کشتی کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک پہلوان تھا, کیا نام تھا, رکانا, رائٹ. وہ بڑا میں بڑا زبردست پہلوان ہوں, مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. اچھا ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کشتی کری اور اس کو ہرا دیا, ٹھیک ہے. تو کشتی جو ہے نا, یہ جو ریسلنگ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ریسلنگ جو ہے ایکچولی مردوں کے لیے ایک پرمیسیبل اسپورٹ ہے, ٹھیک ہے. جیسے تیر اندازی اسی طریقے سے کشتی, اسی طریقے سے سوئمنگ, نبی علیہ السلام نے ان تینوں کو बाकायदा प्रोमोट किया है कि जी ये तीन खेल जो है ना ये तुम खेला करो, क्रिकेट को नहीं प्रमोट किया ठीक है, कुश्ती, तीरंदाजी, स्विमिंग, दिस इज द बेस्ट स्पोर्ट, ठीक है। लेकिन कुश्ती का मतलब ये नहीं कि वो ये क्या ऐसे क्यों मार दिया, अब नहीं लड़ना शुरू हो गए, मारना शुरू हो गए, गुस्सा हो गया उसके बाद, नहीं ये गुस्सा होकर के करने की बात नहीं हो रही, ये दोनों गुस्सा थे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे थे, नहीं ये तो नबी अलैहिस्सलाम हुक्म के ऊपर आपस में कुश्ती कर रहे थे। तो आप लोग जो करते हैं ना वो कुश्ती नहीं होती, वो कुछ और होता है ठीक है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। सही, did muslims did muslims won in uhud no the muslims did not win in uhud theek hai musalmanon ko shikast hui thi theek hai aise nataara sikhate hain ki tum iman wale ho tumhe marne ke baad kamyabi milegi 100% duniya ki kamyabi koi guarantee nahi hai duniya mein tumhe shikast bhi ho sakti hai haar bhi sakte ho duniya mein ji हाँ वो तो हम सारी डिटेल, अभी तो गज़वा वो शुरू भी नहीं हुई अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, फिर उसके बाद एक्चुअल लड़ाई शुरू होगी, फिर हमजा रज़ा की शहादत है, फिर क्या क्या कुछ है गज़वा वो के अंदर, तो और भी ठीक है। चलें बस अब बहुत देर हो गई, कम करते हैं।